आज फिर से हमारे बीच में हमारी परम आदरणीय गीता दीदी जी आ गए हैं। फिर से हम दीदी जी का वेलकम करते हैं। आज दीदी जी का विषय है क्वालिटी ब्राह्मण जीवन। सुनेंगी दीदी जी से।
बाबा कितने अच्छे हैं, कितने दिखाओ, कितने अच्छे और इतने अच्छे बाबा को प्यार करके दिखाओ। हाँ, इतना अच्छा है तो प्यार करके दिखाओ। अच्छे बाबा ने अच्छा ही जीवन दिया। बाबा का संग हमारे जीवन को अच्छा बना देता है, रंग देता है। ब्राह्मण जीवन अपने आप में अच्छा जीवन है। जो एक इंसान को जीना चाहिए वो जीवन है। पर सदा बाबा आगे ही आगे की मंजिल बताते रहते हैं, कहीं भी रुकने नहीं देते। एक स्टेप ऊपर चढ़ेंगे तो और आगे का बताते हैं। और इसी विधि के कारण ही शायद हम इतना आगे बढ़ पाए। ब्राह्मण बनने से देवता बनने की पढ़ाई कर सकते हैं। ब्राह्मण जीवन वो क्वालिफिकेशन है जिसके बाद आगे की पढ़ाई हो सकती है। ब्राह्मण बनना ही मंजिल नहीं है, वो पहला स्टेप है जहां से हम देवता बनने की पढ़ाई पढ़ सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। कई बार हम समझ लेते हैं कि ब्राह्मण बन गए, कार्य पूरा हो गए, कार्य आरंभ हुआ। इसलिए ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता सो भविष्य में देवता, पहला परिवर्तन का स्टेप था शूद्र से ब्राह्मण। जीवन में जो भी मोटे रूप से हमारे आहार में, विहार में, व्यवहार में, आचार में, विचार में, दिनचर्या में, पहरवाइश में, उसमें जो कुछ अपवित्रता से, असत्य था, असार था, अयथार्थ था, वो सत्य ज्ञान मिलने से छूट गए और ब्राह्मण जन्म हुआ। ब्राह्मण जन्म हुआ तब वो एक मोटा बाह्य ऊपरी परिवर्तन या प्राइमरी स्टेज का परिवर्तन, अशुद्ध अन्न, अशुद्ध संग, अपवित्र कर्मों को छोड़ा, बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति ने सिर्फ 7 दिन का ज्ञान, सिर्फ 3 दिन का ज्ञान, कोई तो 1 दिन के लेसन में ही सदा के लिए बदल गए। आधा कल्प से जो भक्ति की और जो आदतें कमजोरियां नहीं छूटी बाबा की, सत्य ज्ञान की शक्ति से 1 दिन में, 7 दिन में, मास में छूट गई। हमें ईश्वरीय परिवार की भी मदद मिली इसमें, निमित्त आत्माओं की भी पालना मिली, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद अगर हम अपना ये परिवर्तन नहीं करते हैं तो वो दिखाई देता है। इसलिए ईश्वरीय परिवार हमें समझाता है कि अब हम बाबा के बच्चे हैं, अब हमें ऐसा नहीं पहनना चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए, है ना, ऐसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। ईश्वरीय परिवार भी इस परिवर्तन को लाने में मदद करता है। बाबा कहते हैं वो पहले स्टेप का परिवर्तन था, मोटी मोटी रस्सियों को तुमने काटा, कर्मों में विकारों को कंट्रोल किया, कर्म में ब्रह्मचर्य, कर्म में शुद्धि, शांति, उससे हम योग्य बने आगे देवता बनने की पढ़ाई के। अब इस ब्राह्मण जीवन को, क्योंकि ये जीवन है और बाबा कहते हैं जीवन सदा होते, है ना, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं रोज 4 घंटा जीता हूँ और बाकी नहीं, जीना माना जीना है ना। तो ये धारणाएं हमारी आजीवन है, इसलिए बाबा स्पष्ट हमें कह देते हैं कि जब तक जीना है ज्ञानामृत पीना है, पढ़ाई पढ़ना है। इस ब्राह्मण जीवन में चलते चलते अब ये नेचुरल बन गए, परंतु ये कॉमन सामान्य नहीं बन जाना चाहिए। कई चीज रोज जो करते हैं फिर वो सामान्य बन जाता है, कोई करते करते मास्टर बन जाते, वो अलग चीज है कि रोज करते करते नेचुरल हो जाना। इस जीवन जीने में मेहनत ना लगे, मुश्किल ना लगे, युद्ध न चले। बाबा कहते हैं ना कि बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते, युद्ध करते देख नहीं सकते, वो बात है कि युद्ध ना रहे, मेहनत ना रहे, वो तब हो सकता है जब ब्राह्मण जीवन सहज स्वीकार हो जाए। जो चीज दिल से आप स्वीकार करते हैं उसके लिए मेहनत नहीं लगती। जैसे दुनिया हमें कहती है कि इस आयु में आपने बहुत बड़ा त्याग किया, तो हम क्या कहते हैं, इसमें त्याग की बात ही नहीं। हमें तो ये महसूस होता है कि हमारा सही जीवन अब शुरू हुआ, हम ऐसे कहते हैं ना। युद्ध तब तक है जब हम इस जीवन को दिल से स्वीकार नहीं, बाबा का कहना और हमारी इच्छा थोड़ी अलग है, इसलिए युद्ध होता है। जो बाबा कहे वो ही मेरी इच्छा, वो ही मेरा विचार, अब और कोई अलग मेरी इच्छा नहीं विचार नहीं। जब ये परख लिया, निश्चय हो गया कि ये भगवान वाच, तो सोचने की बात ही नहीं रही। जब स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, भगवान हमें मिले हैं और वो हमें कह रहे हैं, तो हमें स्पष्ट है कि बाबा जो कुछ कहेंगे सत्य ही कहेंगे, कल्याणकारी ही कहेंगे। हम कर सकते हैं इसलिए कहेंगे, क्योंकि बाबा हमें जानते हैं। बाबा जो कहते हैं वो आचरण में लाना संभव है तब तो कहता है, वरना वो क्यों कहे। कई बार हम सोचते हैं ना, और कहते भी हैं कि बाबा तो जन्म मरण से न्यारा है, बाबा को क्या पता इस दुनिया में कितनी मुश्किल है, कितनी बातें। कई बार हम ऐसे कहते हैं ना बाबा कि बाबा आप भी हमारे तरह ग्रस्ती हो तो पता चले, परंतु नहीं। भगवान हमारे आदि मध्य अंत को जानते हैं, उनको पता है अंतिम जन्म में पहुंची हुई आत्माएं हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं, माना कर सकते हैं, तब तो कहते। जब ये निश्चय हो जाता है तो हमारी अलग इच्छा अलग विचार का तो सवाल ही नहीं है। बाबा ये कहते हैं पर मेरा कहना ये है, तो हम अपने आप को बाबा से भी ज्यादा ज्ञानवान समझते हैं क्या। जो बाबा कहे बेशक हम समझे, पर निश्चय तो बना रहे ना कि सत्य है और कर सकते, तो फिर कोई युद्ध नहीं, कोई फरियाद नहीं, बाबा के आगे कोई कंप्लेन नहीं, रोना धोना नहीं। निश्चय कि ये कर सकते हैं इसलिए बाबा ने कहा और मुझे करना। तो दिन प्रतिदिन ब्राह्मण जीवन नेचुरल सहज बनता जाए, पर सामान्य नहीं, उसकी वैल्यू सदा हमारी बुद्धि में बनी रहनी चाहिए। कई बार हमारा ब्राह्मण जीवन एक रूटीन सा बन जाता है, नियम से कर लेते हैं, रोज क्लास में आते हैं, बस्ता उठा के आए और रख दिया, फिर दूसरे दिन उठा के फिर आते। अच्छी बात है, रूटीन बना के रखना भी अच्छी बात है, परंतु हमें तो और आगे बढ़ना है। ब्राह्मण जीवन की हर बात को क्वालिटी बनाना, क्वालिटी ब्राह्मण जीवन को ही कर्म योगी फरिश्ता जीवन कहते हैं। फरिश्ता बनना माना और कुछ नहीं करना है, ये तो यादगार में बताते हैं ना कि भाई वो लाइट है, वाइट है, उड़ते हैं, पंख है, धरती पर पांव नहीं लगते, ये सिंबॉलिक बातें बताई हैं, प्रैक्टिकल उसका अर्थ जीवन में हमें लाना। फरिश्ता केवल स्थिति नहीं है जो सिर्फ योग के समय प्रैक्टिस करनी है, फरिश्ता जीवन पद्धति है। जैसे हमने भोगी से योगी जीवन पद्धति अपनाई, ऐसे तो नहीं ना कि जैसे जीते थे ऐसे ही जीते रहते और सुबह शाम हमने योग ऐड कर दिया, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई जैसे जीते थे ऐसे जीते रहो और सुबह शाम योग को शामिल कर दो, ऐसा नहीं है। योगी जीवन है, हमने टोटल जीवन चेंज की, हमने योगी जीवन पद्धति अपनाई है। इसलिए उठना बैठना बोलना चलना खाना पीना देखना सुनना सोचना हर बात में परिवर्तन किया। और तभी योग लगता है। सिर्फ अभ्यास से नहीं, सुबह शाम विशेष अभ्यास हम इसलिए करते हैं कि हम नेचुरल हो जाए, सोल कॉन्शियस, हम नेचुरल याद में निरंतर रहे। बाकी हम सबका अटेंशन है कि हमें सारा दिन हर कर्म में याद में रहना है। अब जबकि ब्राह्मण से फरिश्ता बदला, क्वालिटी ब्राह्मण जीवन माना, फरिश्ता जीवन पद्धति अपना, अब आप सोचिए कि ब्राह्मण जीवन में मुझे क्या चेंज करना है जो फरिश्ता बने। शूद्र से ब्राह्मण बने तो कहां क्या क्या परिवर्तन करना, वो बुद्धि में स्पष्ट था न। ब्राह्मण जीवन तो अच्छी जीवन है, पवित्र जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है। ब्राह्मण जीवन में क्या परिवर्तन करे जो फरिश्ता बने। तो ब्राह्मण जीवन में जो जो कुछ हम करते हैं उससे क्वालिटी बनाना, उससे क्वालिटी बनाना। निश्चय, एक बात, चलो निश्चय, निश्चय बिगर पुरुषार्थ सफल नहीं होता। आप देखते होंगे बाबा के कई बच्चे, बल्कि कई सहयोगी आत्माएं, आते भी हैं, ज्ञान भी सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, सहयोग भी देते हैं, पर उनकी स्थिति और जीवन क्यों नहीं बनता है, निश्चय नहीं कि ये ही सत्य है। तो अपने निश्चय के फाउंडेशन को और क्वालिटी में बाबा तो हमेशा कहते हैं कि निश्चय माना निश्चय, निश्चय माना 100%। बाबा एग्जाम्पल भी देते हैं कि बच्चा ऐसे थोड़ी कहेगा कि मुझे 50% तो निश्चय है कि ये मेरे पापा हैं, ऐसे कोई कहेगा? निश्चय माना निश्चय, हर हाल में, हर घड़ी में, हर बात में। स्वयं में निश्चय, बाबा तो बताते हैं ना कि खुद में निश्चय, बाबा में निश्चय, यज्ञ में, ईश्वरीय परिवार में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, ये चार पिलर है। अब आप अपने आप को देखो कि निश्चय के संदर्भ में और मुझे क्या उसमें करना, कई बार हम हिल जाते हैं, कोई संस्कार कड़ा होता है और बरसों के पुरुषार्थ के बाद भी परिवर्तन नहीं होता है तो हम सोचते हैं ना, पता नहीं परिवर्तन मेरा होगा भी या नहीं, परंतु नहीं, हमें अपने आप को पक्का कराना है कि ओरिजिनली हर आत्मा शुद्ध है, सत्य है। कितना भी कड़ा है संस्कार कलियुगी पुराना संस्कार, पर वो ओरिजिनल नहीं है, वो द्वापर से बना मध्य के संस्कार। तो अपने में अचल अड़ोल रहे, हिलेंगे बाबा में निश्चय, मदद मिले तो बाबा बाबा, और न मदद मिले तो मान लो मेरे हिसाब किताब ऐसे हैं कि कितना भी योग करने पर भी नहीं मदद हो सकती, बाबा दे रहा है पर आत्मा कैच नहीं कर सकती है, हिसाब किताब की दीवार कड़ी है बीच में। मैं चाहूं ऐसा परिवर्तन आए तो वाह बाबा, और ना आए तो बाबा कहते ना भगत की तरह लड़ने तो नहीं बैठते ना बाबा, कई सोचते ना बाबा के बने फिर भी ये पेपर, बाबा के बने तो भी ये बातें, बाबा के बने तो अच्छे अच्छी बात है ना, पर इसका अर्थ ये थोड़ी कि गुनाह सारे माफ। जो हमने हिसाब बनाए हैं वो तो हमें चुकाने हैं ना, वो हिसाब तो चुकाने पड़ेंगे। बाबा के ज्ञान से, याद से तो आत्मा में हिम्मत रहेगी ना हिसाब चुकाने में। बाबा तो इस रीति से मदद करते, ताकि हिसाब तो रहेगा ही जिसको मुझे हिम्मत से, धीरज से, योग से चुकाना है। बीमारी तो खुद को ही भोगनी होती है। सुविधाएं कर सकते हैं संबंधी, अच्छी हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, लग्जरियस रूम आपके लिए बुक करेंगे, अच्छे डॉक्टर हॉस्पिटल का प्रबंध करेंगे, पर दर्द वो तो मुझे ही झेलना है ना। पर जब साथी मददगार है तो आत्मा को एक आथत रहती है। जब बाबा के लिए हम जानते हैं कि हर घड़ी बाबा मेरे साथ है, तो हिसाब चुकाने में आत्मा को हिम्मत रहती, बल रहता। माना विपरीत परिस्थिति में भी मुझे अपने आप को अचल रख। तो वो चेक करो, जब ऐसी बातें आती है तब निश्चय हिले। ईश्वरीय परिवार में निश्चय बल नंबर वार है, वैरायटी है। स्टूडेंट तो वैरायटी ही होंगे ना, एक क्लास में 50-100 आप पढ़ते हैं तो हर कोई फर्स्ट क्लास लेने वाला होता है क्या, उसमें भी नंबर वार तो होगा ना। यहाँ भी नंबर वार, चाहे हम मधुबन में रहने वाले हैं हम भी नंबर वार, सेंटर में रहने वाले वो भी नंबर वार। मधुबन में रहने से, सेंटर में रहने से परफेक्ट तो नहीं हो गए ना, हम भी तो दुनिया से ही आकर जवाबदारी उठाते ना बाबा के कार्य। कोई भी ऊपर नीचाई देखने से हिले नहीं, ये हम आत्माओं की कमजोरी है। भगवान तो सत्य ही है ना। बाबा कहते हैं संस्कार आपस के हैं, हिसाब किताब आपस के हैं, नंबर वार हम हैं, और हम नाराज हो जाते हैं बाबा से, रुठ जाते हैं बाबा से। तो वहां ईश्वरीय परिवार को समझना, पहचानना, हर ब्राह्मण आत्मा ने भगवान को पहचाना और मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ना शुरू किया, चाहे कितने भी नंबर वर है, पर ये विशेषता तो है ना। आज मान लो मुझे मनुष्य से देवता बनना है, तो इस पढ़ाई में मुझे कंपनी कौन दे रहा है, कौन दे रहा है? यही ब्राह्मण परिवार दे रहा है। एक भाई रोज क्लास में आते, इतनी आयु होने के बाद भी नियमित क्लास में, पर इसका नित्य का नियम कि क्लास में आना, बैठना, सो जाना, क्लास पूरा होता है जागना और जाना। कई सोचते कि ये क्यों आते, अच्छा वो लाभ नहीं ले रहे हैं, पर आप और लाभ ना लेने के बाद भी इनका निश्चय बना रहना, लगन लगी रहना और रोज आना और हमें कंपनी देना, ये कोई कम विशेषता है क्या? ये भी तो विशेषता है। चलो कोई शरीर का अपना हिसाब है आत्मा को, योग की परख सिर्फ स्थिर बैठना तो नहीं, उसकी लगन सदा बाबा से है, सिर्फ विशेष अभ्यास में उनको नींद आती है। और सच में मैं आप बताऊं, उस आत्मा की विशेषता थी कि वो सदा क्लासरूम बाबा का योग रूम साफ करके जाते रोज। 70 वर्ष की आयु तक तो मैंने उसको देखा। मैंने उनको बोला कि अब आपकी आयु हुई है, आप नहीं करिए। कैसे नहीं, वो पारसी भाई कहा कि मेरे दादा, पारसियों का जो फायर टेम्पल होता है ना, अग्यारी बोलते हैं, कहते वो रोज साफ करते, तो मुझे तो बाबा मिला है ना, तो सातमा के लिए इतना मान हुआ कि देखो रोज लाभ लेने वाले भी तो सेवा नहीं कर पाते। ईश्वरीय परिवार को समझना, संग में रहना, रंग में कहाँ रंगना और न रंगना, ये हमारे अंदर कला होनी चाहिए। ड्रामा में निश्चय, बहुत बड़ा पेपर लेता है ड्रामा। हम अपने पूर्व के हिसाब को नहीं जानते हैं, इसी को ड्रामा कहते। ड्रामा में किसकी क्या नुंद है किसी को पता नहीं, पर ये एक्यूरेट है, इसमें कोई अन्याय और पक्षपात नहीं है, हेराफेरी नहीं है, ये तो निश्चय है ना। जो कुछ हो रहा है एक्यूरेट, मुझे मेरा उत्तम पुरुषार्थ करना है। तो देखो अब निश्चय की स्थिति क्या है, उससे और क्वालिटी बनना। कि मुझे हिलना नहीं, चलो वाणी में थोड़ा तो आ जाता है ना, फिर भले हम कहेंगे मैं तो ऐसे ही बोल रही थी बाबा के लिए, पर वाणी तो चली ना मेरी, मन हिला, तो मुझे और उससे एक रस क्वालिटी बने। पढ़ाई, दूसरी बात पढ़ाई, हम हर एक पढ़ रहे हैं, रोज क्लास में जाते हैं, अपनी पढ़ाई की क्वालिटी को देखो। योग जो भी अभ्यास आप करते हैं, मुरली पढ़ते हैं, मुरली क्लास में जाते हैं, क्वालिटी पढ़ाई, हरेक अपने आप को देखो, पढ़ते समय आत्माभिमानी, बाबा पढ़ा रहे हैं, ये स्मृति पढ़ाई में इंटरेस्ट, इधर उधर ध्यान नहीं, नोटबुक में चित्र बनाना नहीं, पढ़ने में मन नहीं लगता है तो क्या क्या करते बच्चों को पूछो, कोई मिस कॉल एक दो को देते रहते हैं, कोई मैसेज लिख के एक दो को देते रहते हैं। एक फर्स्ट क्लास स्टूडेंट कैसे पढ़, होमवर्क कितना करते, सारा आधार तो होमवर्क पर है। शिक्षक सबको एक सरीखा पढ़ाता है, पर नंबर कौन सा विद्यार्थी लेता है, जो अच्छा होमवर्क करता है। बाबा की सीजन पूरी हुई मार्च एंड में, इस सीजन में बाबा ने क्या होमवर्क दिया, क्या होमवर्क दिया। सात मुरली तो चली ना बाबा, बाबा ने प्यार किया, उमंग उत्साह भरा, महिमा की, वो तो है ही है, होमवर्क भी दिया। सीजन पूरी होने के बाद फिर मुरली की स्टडी करना और होमवर्क निकालना, बाबा ने कहा ना दिल से मिलन, कहीं भी बैठे पर प्रेम के सीट पर बैठे। हमारा राज्य आया कि आया, प्रभु मिलन का भाग्य मिला है वो अनुभूति करना। तो आप रिवाइज करेंगे तो पता चलेगा कि होमवर्क क्या मिला है और ये 6 मास मुझे क्या अभ्यास। अब अप्रैल से सितंबर मुझे क्या पढ़ाई कर, अक्टूबर में फिर बाबा आएंगे, आगे की पढ़ाई बताएंगे। तो अपनी पढ़ाई की क्वालिटी को देखो, आध्यात्मिक ज्ञान ऐसी चीज है कि अभ्यास में लाने से ही अनुभव होता है और रुचि बढ़ती। सिर्फ सुनने से बोझ लगेगा आत्मा, आनंद नहीं आएगा। ये बहुत सूक्ष्म बात है, आप इस पर चिंतन करना। पुरुषार्थ, होमवर्क करना माना पुरुषार्थ करना। और बाबा अब समय अनुसार कैसा पुरुषार्थ चाहते हैं, कितने समय से बाबा कह रहे हैं तीव्र पुरुषार्थ। विमान उड़ने से पहले क्या करता है, क्या करता, रनवे पर कितना फास्ट दौड़ता है और फिर उड़ता है। धीमे धीमे चाल से चले तो उड़ नहीं सकता है, चलते 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 इतना फास्ट दौड़ेगा और फिर टेक ऑफ करता है, उड़ जाते। हमें भी फरिश्ता बनना माना उड़ना है ना, डिटैच न्यारा बनना है। तो उससे पहले की स्टेज क्या है? तीव्र पुरुष। जब आप ज्ञान में आए थे तब जो थे वही चाल है या रफ्तार बढ़ी है? कईयों का ऐसा ही होता है, जो शुरू से आए और जो फिक्स किया वही, उसमें कोई प्रगति नहीं। उतना ही टाइम, उतनी ही पढ़ाई, उतना ही सेवा, उतनी ही सहयोग, बस आगे नहीं। अब पुरुषार्थ में ज्यादा समय देने की बात नहीं है। तीव्र पुरुषार्थ माना जो पुरुषार्थ आप करें वो क्वालिटी का, आजकल क्या करते हैं, चीजें तो बनी हुई है ना, उसकी क्वालिटी तो अच्छी करते जाते। कारें कब से बनी हुई, मोबाइल कब से बने, हर चीज में क्या है, एक्सपर्टाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, क्रिएटिविटी। योग की क्वालिटी हो, एक घंटा बैठे, क्वालिटी बैठे और मन लग जाए, बैठे सिमट जाए, उड़ जाए, मिलन मना ले। पहले टाइम लगता था, अब क्या है, लगन बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा तो अभ्यास क्वालिटी होगा। अपने त्याग को चेक कर, बाबा के बने जो हमने छोड़ा, त्याग की छोड़ा ना, त्याग तो किया ना। बाबा कहते हैं वो मनसा से भी त्याग, मन में भी वापस ना, जब एक लंबे समय हम चलते हैं तो कई बार होता है ना, जो छोड़ा था वो वापस ले लेते। नहीं, बाबा कहते हैं ना, मनसा में भी ना, अंश भी न रहे। ये हमारी मंजिल, कोई भी अंश विकार का न रहे, मनसा भी, कोई फीलिंग में भी बैड फीलिंग नहीं। तो त्याग एक इस अर्थ में चेक करो, स्मृति में भी ना आए। पहले हम इस होटल में बहुत खाते थे, वहां का डोसा बहुत अच्छा आता है, मन से भी तो स्वाद ले लिया ना। बाबा कहते ना, जहां से निकल कर आ गए उस गली में वापस मुड़ना नहीं। मन भी शुद्ध बनाना है तो मनसा में भी वो चीजें क्यों मुझे याद, याद आएगी, पर मेरा पुरुषार्थ ऐसा हो, फुल स्टॉप लगा। तो मेरी जमा शक्ति खर्च नहीं हो, नहीं तो युद्ध में शक्ति खर्च हो जाती है। जो छोड़ा वो फिर चाहना, उसी में तो युद्ध है। छोड़ा माना छोड़ा, अब वो चीजें नहीं। अच्छा, पॉजिटिवली आप चेक करो, बाबा के लिए, यज्ञ के लिए, सेवा के लिए त्याग हमारा कैसे। आज एक मनुष्य के प्यार के पीछे मनुष्य क्या करता है? आज एक देश की रक्षा के लिए व्यक्ति क्या करता है? हम बाबा के लिए, यज्ञ के लिए, सेवा के लिए कैसा त्याग करते हैं? तपस्या को देखो, तपस्या कर रहे हैं, अब उसको चेक कर, क्वालिटी तपस्या हो, बैठे और एकाग्र हो जाएं, समेट जाएं, मगन हो जाएं। और ये होता है अभ्यास करते करते, लगन बढ़ते बढ़ते वो होने लगता है। अब है ये सूक्ष्म अंदरूनी परिवर्तन। वो बाह्य था, मोटा था, सब उसमें मदद कर सकते हैं, पर ये तो सूक्ष्म है, अंदरूनी है। अब अपने अंदर की स्थिति को तो हम खुद ही जानते हैं ना, और कोई थोड़ी जानता है। मेरी अंदरूनी अवस्था क्या है वो तो मुझे ही पता है, तो मुझे वहां क्या ध्यान देना। अपने वैराग्य को चेक कर, बेहद का वैराग्य, किसी से दुख मिला, धोखा मिला, मन हट गया, फिर कोई सुख देगा, प्यार देगा, फिर मन वापस वहां जुड़ेगा, तो वैराग्य नहीं हुआ था। बेहद का वैराग्य, से वैराग्य माना मुझे कहीं भी फंसना नहीं, राग ना आवे, आसक्ति ना आवे। बाबा ने एक बहुत अच्छी व्याख्या बताई थी कि बेहद का वैराग्य माना लवलीन हो जाना बाबा में। कितनी बड़ी चीज है। वैराग्य माना सिर्फ नकारात्मक स्वरूप नहीं कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वैराग्य माना बाबा से इतना प्यार कि बाबा में लवलीन हो जाए। सेवा को चेक कर, सेवा हर कोई करता है, दुनिया में भी करते हैं, बहुत सोशल सर्विस क्लब्स हैं, बहुत लोग आश्रमों में, अपने अपने धर्मों में है ना, मंदिरों में सेवा के लिए जाते हैं। सेवा बहुत लोग करते, हमारी सेवा की विशेषता क्या है, रूहानी सेवा। निस्वार्थ तो पता है ना, जो अच्छा करेंगे वो मिलना ही है। हम बच्चों को तो पता है, पर चलो ठीक है, व्यक्तिगत लाभ के हिसाब से नहीं करते वो निस्वार्थ, अच्छी बात है, पर रूहानी सेवा है। मैं रूहानी लगनी चाहिए, आत्माभिमानी स्थिति से बाबा की याद के साथ सेवा। ये निस्वार्थ हो, निमित्त भाव हो, निर्माणता हो, तभी रूहानियत आती है, रूहानियत ऐसे नहीं आती। बाबा कहते ना, समय पर निर्संकल्प होकर एक धक से जो सेवा करते हैं, सहयोग देते हैं, उनको अंत तक सहयोग देने के लिए बाप बंधा हुआ है। बाबा बंधा हुआ, पर निर्संकल्प होता, एक धक से पूछ के करना, ऐसे नहीं, खुद की लगन से। तो अपने सेवा सहयोग को चेक कर, बाबा का गायन क्या है, ब्रह्मा बाप का गायन क्या है, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाए, अपने आप सभी कुछ कर, हर प्रकार की सेवा बाबा ने। अपने आप किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़े, अपने आप छिपाया, माना निमित्त भाव रहा, अभिमान नहीं आया, शो नहीं है, रिटर्न की इच्छा नहीं रही। तो अपने सेवा और सहयोग में चेक करो, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में जो कुछ करते हैं उसमें डिटैच क्वालिटी करेंगे तो फरिश्तापन यहाँ ही महसूस हो। हल्कापन, स्वयं में आनंद, सदा उमंग उत्साह रहेगा, अल्टीमेट ब्राह्मण जीवन से भी तो पार जाना है, इसी में तो नहीं पकड़ के बैठ जाना है। हमारा ध्येय तो फरिश्ता बनना है ना, हम अच्छे सेवाधारी हैं, अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, अच्छे स्पीकर हैं, हम अच्छे मैनेजर हैं, कोई भी सेवा देते हैं, अच्छी कर दिखाते हैं, पर हम अच्छे योगी, हम अच्छे योगी हैं, आखिर इस ब्राह्मण जीवन से भी पार वापस मुझे जाना है ना। तो ये खुद देखना है और क्वालिटी पर। तो जो बाबा कहते हैं ना कि चेहरे और चलन से बाबा अनुभव होगा, बाबा को हम प्रत्यक्ष कर सकें, हमें देखें और बाबा याद आवे, व्यक्ति अंतर्मुखी बन जाए, अव्यक्त भाव में स्थित हो जाए, भल वो जानते हैं या न जानते हो, पर हमारी स्थिति से अनुभव करें। और अब वही समय आ रहा है, इसलिए बाबा हमें तैयार कर रहा है। तो हम आधा घंटा उसी लक्ष्य से अभ्यास करेंगे। वैराग्य का अर्थ अपना रोल छोड़ना नहीं है, वो प्ले करते हुए भी वो महसूस करे कि ये योगी आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं, ये अनुभूति आपसे हो और आप भी वो करते हुए अपने आप को अंदर से बाबा ही याद रहे। बेशक ये एक चीज से कोई एक जल्दी नहीं हो जाती, लंबे समय का अभ्यास चाहिए, इसलिए बाबा हमें सावधान कर। तो सभी खड़े हो जाएं। थोड़ा हाथ पांव स्ट्रेच कर ले, कब से बैठे हैं आप। थोड़ा खड़े खड़े दौड़िए, खड़े खड़े दौड़िए, धीरे 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 आराम से। अभ्यास हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं, बल्कि बैठे बैठे ही करते हैं, पर आप कब से बैठे हैं तो शरीर की तो सीमा है ना, तो खड़े खड़े थोड़ा अभ्यास कराएंगे। जिनको लगे कि मैं थक गई हूँ बैठ जाना है तो वो अपने आप बैठ जाए। पहला अभ्यास, मुझे स्वयं में मस्त
का हो जाना। अपने आप में खो जाए। मेरा अपना दिव्य स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप अलौकिक आत्मस्वरूप मुझे स्पष्ट है कि शरीर लौकिक है, भौतिक है, मैं आत्मा अलौकिक दिव्य जी अपने स्वरूप में आनंद है। आत्मानंद निजानंद स्वरूपानंद राइट साइड घूम जाए। दूसरा अभ्यास बाबा में मगन हो जाए। मेरा बुद्धि योग बाबा से लग चुका है। योग में एकाग्र होना मेरी लगन बाबा से लग गई है। उसमें ही मगन हो जाए। दिल का सच्चा प्यार एक बाबा से है, उस प्यार में समा जाना है। लवलीन द बन जाना। मैं बाबा का बाबा मेरा राइट साइड घूम जाइए। जो पार्ट इस अंतिम जन्म में मुझे मिला है लौकिक पार्ट अलौकिक पार्ट मुझे अपने पार्ट में एक्यूरेट बनना है। अपने पार्ट में निमित्त ट्रस्टी मालिक बाबा है। मैं निमित्त बनकर पार्ट प्ले कर मुझे मालिक की श्रीमत अनुसार पार्ट प्ले करना है। और हल्का रहना है। इसी पोजीशन में बैठ जाए। उसी तरह दूसरों के पार्ट को त्रिकालदर्शी ज्ञान स्वरूप बनकर साक्षीपन की सीट पर सेट होकर देखना है और शुभ भावना रखनी है। साक्षी दृष्टा बनना है और शुभ भावना का सहयोग देना है। बैठे बैठे राइट साइड घूम जाए।
सदा। वतन वासी बनना है, भल शरीर से इस दुनिया में रहते हैं, मन बुद्धि से वतन वासी बनना है। बिंदु बन बिंदु बाप के साथ असली घर मूल वतन में रहना है। या फरिश्ता बन अव्यक्त बाप दादा के संग सूक्ष्म वतन में रहना है। साकार वतन में सदा मन की आंख के सामने मधुबन बेहद घर में रहना है। राइट साइड घूम जाइए, अब शेष ब्राह्मण जीवन मास्टर दाता बन देना है। प्यारे बाप दादा ने हमें भरपूर किया, सब कुछ दिया है, मुझे भी मास्टर दाता बन सबको देना है। मनसा
वाचा, कर्म, तीनों रीति से दिल मनसा संदेश दे, शुभ भावना दे, योग शक्ति दे, प्रकाश दे, वाणी कर्म से सुख दे, लौकिक अलौकिक सारा विश्व प्रकृति जगत सबको दे, ओम शांति। योग की पावरफुल स्थिति और वातावरण में से आवाज में आना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हमारे आदरणीय गीता दीदी जी ने हमें क्वालिटी ब्राह्मण जीवन की क्या होनी चाहिए बहुत ही डेप्थ में जाकर के, गहराई में जाकर के सारी बातें स्पष्ट की। दीदी जी का हम तहे दिल से बहुत बहुत थैंक्स मानते हैं। दीदी जी दूसरी बार हमारे बीच में हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर करने के लिए पहुंच गए हैं, तो दीदी जी की भी भावना आप सभी के प्रति इतनी है कि सभी यहाँ से बाबा के बेहद घर से भरपूर होकर के जाए। तो फिर से दीदी जी का हम आभार, ओम शांति।